हालात बुरे
काशाने बसीरत, एक ऐसा मुकम्मल YouTube चैनल जिस पर महरूम बसारत के लिए बिलखुसूस और तमाम अफराद के लिए बिलमूम सैकड़ों की तादाद में इस्लामी कुतुब दस्तियाब हैं। लिहाजा गुजारिश है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए काशाना बसीरत को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप इल्म के हुसूल के साथ साथ मजहब अहले बैत की इशात में भी अहम किरदार अदा करते रहें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
अस्सलामुअलैकुम। ये काशाना बसीरत यूट्यूब चैनल है। आज हम आपके लिए किताब इस्लाम और सियासत रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसके मुसन्निफ आयतुल्ला मिसबा यजदी हैं। तो आइए सुनते हैं इस किताब का पार्ट नंबर 9, पेज नंबर 85 से। बस नतीजा ये निकला कि इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि दीन की विलायत आज़ादी के मुखालिफ है, क्योंकि इंसान की फसल मकूम आज़ादी है जिससे इंसान का खुदा का जानशीन होना लाजिम आता है। नंबर 3, गुज़िश्ता एतराज़ एक दूसरे लिहाज से। बाज़ लोगों का कहना यह है कि चूंकि इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ तरीक़ों से तरक्की और पेशरफ्त होती है, और जैसा कि इंसानी जदीद तमद्दुन में नए तरीक़े की नज़रियात और तफरुकात पैदा हुए हैं, ऐसी सूरत में दीन को इंसानी हकूक़ बयान करने चाहिए, ना कि ये कि दीन तकलीफ और इल्ज़ाम आवर अहकामात बयान करे। गुज़िश्ता ज़माने में चूंकि ग़ुलामी बर्दगी और ज़ुल्म व जूर का ज़माना था, और जो भी ज़िम्मेदारी और मसूलियत इनको दी जाती थी वो इसको कबूल करते थे, लेकिन आज वो ज़माना नहीं है। आज हर इंसान अपने को आका समझता है। आज इंसान ज़िम्मेदारी को कबूल नहीं करता बल्कि अपने हकूक लेना चाहता है। दर हकीकत आज का मॉडर्न ज़माना हमारे और गुज़िश्ता ग़ुलामी और बर्दगी को कबूल करने वाले लोगों में एक बहुत बड़ी दीवार है, जिसका तकाजा ये है कि आज मॉडर्न इंसान ने गुज़िश्ता ज़माने की तरह ज़िम्मेदारी को कबूल करने को बंद कर दिया है और अपने हुकूक का मुतालबा करता है। आज तकलीफ़ और ज़िम्मेदारी को कबूल करने की बातें करना माजी की तरफ पलटता है। आज के इस ज़माने ने, जिसमें हकूक बशर का नारा लगाया जाता है, डेमोक्रेसी की बरकत से इंसान को इस्तेशार और ग़ुलामी की कैदोबंद से आज़ाद कर दिया है। आज का दौर वो दौर है कि जिसमें जवादियान तकलीफ और ज़िम्मेदारी की बातें करते हैं, इनको बालाए ताक रख दिया जाए और हकूक बशर का नारा लगाने वाले दीन को तलाश किया जाता है। एतराज़ करने वाले अपने हदफ और मकसद तक पहुँचने के लिए नेज़ समाज बिलखसूस जवानों को अपने तरफ जज्ब करने के लिए ऐसी बातें करते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों का सहारा लेते हैं, और अपनी बातों को खूबसूरत और दिलनशीन अंदाज और मुख्तलिफ तरीक़ों से जाशनी लगा कर पेश करते हैं, लेकिन हम इन बेढंगे सवालों का सही अंदाज में जवाब पेश करते हैं। नंबर 4, हमारा जवाब। मोतरिस का मुतलक तौर पर ये कहना कि आज का इंसान अपने हकूक़ का मुतालबा करता है, तकलीफ़ और ज़िम्मेदारी का मुतालबा नहीं करता, ये बात बेहूदा और बातिल है। जैसा कि फ़िलासफ़ाए हकूक़ भी कहते हैं, इंसान इस वक्त किसी चीज़ का मुस्तहक नहीं होता जब तक वो दूसरों के लिए कोई काम अंजाम ना दे दे। मिसाल के तौर पर, अगर शहरी हजरात को साफ़ और सालम हवा में रहने का हक़ है, तो दूसरे लोगों पर ज़िम्मेदारी है कि वो हवा को आलूदा और ख़राब ना करें, पोल्यूशन ना फैलाएं। इस तरह अगर किसी को अपने माल में तसरुफ़ का हक है, तो दूसरों पर ज़िम्मेदारी है कि इसके माल में दस्त दराजी ना करें, वरना अपने माल से कोई भी बहरामंद नहीं हो सकता। लिहाजा अगर इसके लिए कोई हक साबित होता है तो वह इसके बदले कोई काम अंजाम दे। अगर किसी को यह हक है कि वह समाज की तैयार करदा चीज़ों को इस्तेमाल करे, तो इसकी ज़िम्मेदारी है कि वो भी किसी तरीके से समाज की खिदमत करे और मसूलियत और ज़िम्मेदारी को कबूल करे और दूसरों पर बार ना बने। लिहाजा हक और तकलीफ़ एक दूसरे के लाजिम और मज़लूम हैं। लिहाजा ये कहना कि इंसान सिर्फ हुकूक का तालिब हो और तकलीफ को कबूल ना करता हो, ये बात काबिले कबूल नहीं है। तवज्जो रखनी चाहिए कि इलाही और गैर इलाही तमाम दानिशमंदान और फ़िलासफ़ाए हुकूक ने कुल्ली तौर पर जिम्मेदारी और मसूलियत की नफ़ी की है, बल्कि तकलीफ और जिम्मेदारी पर यकीन रखते हैं, जिससे पता चलता है कि मोतरस की तकलीफ से मुराद इलाही तकलीफ है, जिसका निचोड़ यह है कि खुदावंद आलम को हम पर तकलीफ़ व ज़िम्मेदारी नहीं करना चाहिए, वरना तो इनकी नज़र में हक़ के मुकाबले में तकलीफ़ होने से गुरेज नामुमकिन है, क्योंकि तकलीफ़ को तमाम उकला और दानिशमंदों ने कबूल किया है। हमारी बात की तायद ये है कि खुद उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उबद और मौला के दरमियान राबता और मौला की तरफ से हुक्म सादर होना और इसकी अतात का ज़रूरी होना ग़ुलामी और बुर्दगी कल्चर के मुनासिब है। नंबर 5, खुदा की नाफरमानी तारीख की नज़र में। सिर्फ आज का मॉडर्न इंसान ही खुदा की अतात और तकलीफ़ से फ़रार इख्तियार नहीं करता, बल्कि तारीख में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शैतानी वसवसों की खातिर खुदा की नाफरमानी और कानून शिकनी की है। ये कहना कि इंसान हकूक का तालिब है, तकलीफ का नहीं, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि शुरू ही में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद काबील ने खुदा की मौसियत की और खुलेआम तकलीफ़ और इलाही कवानीन से सर पेची की और कानून शिकनी करते हुए अपने भाई हाबील को कत्ल कर डाला। तर्जुमा, ऐ रसूल, तुम इन लोगों से आदम के दो बेटों हाबील और काबील का सच्चा वाकया बयान कर दो कि जब इन दोनों ने खुदा की बारगाह में नज़र पेश की तो इनमें से एक हाबील की नज़र तो कबूल हुई और दूसरे काबील की नज़र ना कबूल हुई। तुम्हारे हसद के हाबील से कहने लगा, मैं तुझे ज़रूर मार डालूँगा। इसने जवाब दिया कि भाई, इसमें अपना क्या बस है, खुदा तो सिर्फ़ परहेजगारों की नज़र कबूल करता है। सूरह मायदा आयत नंबर 27। कुरान मजीद में पैगंबरों के वाक़यात इस बात की हकायत करते हैं कि अक्सर लोगों ने अपने ज़माने के नबी को झुटलाया और ना सिर्फ ये कि इनकी बात पर लबैक नहीं कहा, बल्कि इन पर तोहमत व बहतान लगाते थे और इनका मसखरा करते थे, यहाँ तक कि इनको कत्ल भी कर देते थे या इनको शहर बदर कर देते थे। अगर कोई नबी इनके लिए मुफीद बातें बयान करता था, मसलन कुरान के मुताबिक लोगों को कम फरोशी से रोकता था, जैसा कुरान करीम में इरशाद होता है, तर्जुमा, और लोगों को इनकी चीज़ें कम ना दिया करो, सूरह शौरा आयत नंबर 183। इनके जवाब में कहते थे, तर्जुमा, वो लोग कहने लगे, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज जिसे तुम पढ़ा करते हो तुम्हें ये सिखाती है कि जिन बुतों की परस्तिश हमारे दादा करते आए हैं इन्हें हम छोड़ बैठें या हम अपने मालों में जो कुछ चाहें कर बैठें? सूरह हूद आयत नंबर 87। मुमकिन है इस मौके पर कोई कहे कि तारीख में अंबिया औलिया इलाही के मुकाबले की वजह बुत परस्ती, शिर्क और शैतान की पैरवी थी, और हमारा कहना तो यह है कि इंसान किसी भी माबूद की अतात की तौक अपनी गर्दन से निकाल दे और बुतों और शैतान की पैरवी भी ना करे, लेकिन ये कहना भी औलिया इलाही की नज़र में बातिल और मर्दूद है, क्योंकि इसका नतीजा ये है कि वही इलाही के मुताबिक इंसान ऐसे रास्ते पर पहुंच जाता है कि या खुदा की अतात करे या तागूत यानी शैतान की अतात करे, और वो किसी की भी अतात ना करे, इसके लिए मुहाल। और अगर कोई ये नारा लगाए कि मैं किसी का बंदा और ग़ुलाम नहीं हूँ, दर हकीकत ऐसा शख्स तागूत और अपनी हवाए नफ्स का ग़ुलाम होता है। इस वजह से कुरान करीम में इरशाद होता है, तर्जुमा, खुदा इन लोगों का सरपरस्त है जो ईमान ला चुके कि इन्हें गुमराही की तारीकियों से निकाल कर हिदायत की रोशनी में लाता है, और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया इनके सरपरस्त शैतान हैं कि इनको ईमान की रोशनी से निकाल कर कुफ्र की तारीकियों में डाल देते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 256। दूसरी जगह खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, ऐ आदम की औलाद, क्या मैंने तुम्हारे पास ये हुक्म नहीं भेजा था कि खबरदार शैतान की परस्तिश ना करना? वो यकीनी तौर पर तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। और ये कि देखो, सिर्फ मेरी इबादत करना यही निजात की सीधी राह है। सूरह यासीन आयत नंबर 60-61। इस आयत का मतलब ये नहीं कि अगर शैतान की इबादत छोड़ दी जाए तो फिर किसी दूसरे की इबादत और अताअत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको चाहिए कि खुदा की इबादत करे। जिस तरह के कलमे में ला इलाह के बाद इल्लल्लाह है, इस बिना पर जिन लोगों ने वही पर तवज्जो की और ख्वाब गफलत से बेदार हुए, वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इस खुदा की इबादत करें जो इनका खालिक और हकीकी मालिक है, और जिसके हाथ में इनकी ज़िंदगी, मौत, जवानी, पीरी और सेहत व सलामती है। इसकी बंदगी बाइस इफ्तिखार है, इसकी तकालीफ हिकमत और रहमत के सर चश्मे से सादिर होती हैं, और इन पर अमल करना इंसान के लिए कमाल और सआदत का बाइस है। नतीजा ये निकला कि तकलीफ और मस्तूलियत को कबूल ना करना हैवानी दरंदगी, सिफत और शैतानी पैरवी की वजह से है कि जो हमेशा तारीख में मौजूद है और आज के मॉडर्न ज़माने से ही मखसूस नहीं है। दर हकीकत ये मॉडर्न इंसान है कि जिसने मुदनियत से किनारा कशी अख्तियार कर ली है, और जाहिलियत तो वहशी गरी के ज़माने की तरफ पलट गया है और गुज़िश्ता ज़माने की तरफ पलट रहा है, वगरना अनबिया की तरबियत शुदा अफराद ने हैवानियत और वहशी गरी से किनारा कशी कर ली है और ला कानूनियत से निकल कर कानून, तकलीफ और मसूलियत को कबूल करके सही मायनों में मदनियत को कबूल कर चुका है। लिहाजा बाज़ लोग किस तरह ये कह सकते हैं कि मॉडर्न ज़माना इस बात का तकाजा करता है कि इंसान किसी भी जिम्मेदारी को कबूल ना करे, ये तमद्दुन है या वहशीगरी? तमद्दुन और महदूदियत कानून और मसूलियत कबूल करने में है, वरना वहशीगरी से कोई फ़र्क ना होगा। लिहाजा जो लोग कानून, तकलीफ और मसूलियत का इनकार करते हैं, वो लोग मुदीरियत और वहशीगरी के कदीम ज़माने की तरफ पलटना चाहते हैं। और ये तय है कि कोई शख्स इस नज़रिए के तहत मुकद्दस और खलीफतुल्ला नहीं हो सकता जिससे वो हमारे लिए नमूना अमल करार पा सके। इस नुक्ते की तरफ इशारा करना ज़रूरी है कि मुदनियत और कानून की तरफ माइल होना, जैसा कि हमारे समाज में रिवाज पैदा कर चुका है, इसका मतलब मुदनियत और कानून मंदी की कमाल को पहुंचना है, ताकि किसी भी जगह कानून की खिलाफ वर्जी ना की जाए और ना ही ये कोई नया हादसा हुआ है, और ना ही हमारा समाज इनकलाब के बाद 19 साल तक वहशीगरी का शिकार था और आज मुदनियत की तरफ माइल हुआ है, बल्कि हमारा ये इनकलाब मुदनियत और इस्लामी तमद्दुन पर इस्तवार है और इनकलाब के असल अहदाफ में से है कि तमाम मकामात पर इलाही कवानीन की रियायत की जाए। नंबर 6, खुदा की अताअत और आज़ादी। अंबिया अलैहिस्सलाम लोगों को खुदा परस्ती की दावत देते थे और तागूत की पैरवी से रोकते थे। इस सिलसिले में खुदावंद आलम फरमाता है, तर्जुमा, और हमने तो हर उम्मत में एक ना एक रसूल इस बात के लिए ज़रूर भेजा कि लोगों खुदा की इबादत करो और बुतों की इबादत से बचे रहो। सूरह नहल आयत नंबर 36। इस चीज़ के पेश नज़र ये बात कबूल नहीं की है कि इस्लाम ने इंसान को अपने अलावा यहाँ तक कि खुदा की अताअत से भी मना कर दिया है, और ये तय है कि जो मज़हब हमको खुदा की अताअत की दावत ना दे वो बातिल है। और जैसा कि हमने इशारा किया कि अनबिया अलैहिस्सलाम का मकसद खुदा की मुतलक तौर पर अताअत करने की दावत देता है, हमारी मौत व हयात इसी से वाबस्ता है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो खुदा ही के हैं और हम इसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 156। हम खुदा की तरफ से हैं और खुदा की तरफ पलट कर जाना है, अब जबकि हमने खुदा वंदे आलम को अपना मालिक हकीकी मान लिया, तो फिर किस तरह ये बात कबूल की जा सकती है कि खुदा को हमें हुक्म देने और फरमान सादर करने का कोई हक नहीं है। क्या मालकियत इसके अलावा है कि मालिक जिस तरह भी चाहे अपनी चीज़ में तारीफ करे। लिहाजा ये बात काबिल कबूल नहीं है कि कोई ये कहे कि हमने इस्लाम तो कबूल कर लिया है लेकिन हम खुदा की बंदगी के कैदोबंद से आज़ाद हैं, क्योंकि इस तरह की मुतलक आज़ादी ना सिर्फ ये कि इस्लाम कबूल नहीं करता बल्कि इसको तो अकल भी कबूल नहीं करती। इस्लाम आज़ादी का नारा लगाता है लेकिन गैर खुदा और तागूत की इबादत व अताअत से आज़ादी और रिहाई का नारा लगाता है, खुदावंद आलम की अताअत से आज़ादी का नारा नहीं लगाता। अगरचे इंसान आज़ाद व खुद मुख्तार पैदा किया गया है लेकिन तशरीयन व कानूनन खुदा की अताअत पर मुकल्लफ है, यानी हम अपने इरादे और इख्तियार से खुदा की अताअत करें। और ये तय है कि खलकत के अतबार से मैं हर मखलूक पर बंदगी और अबूदियत की मोहर लगी हुई है। तकवीनी तौर पर कोई भी मखलूक खुदा की बंदगी के लेबल से खाली नहीं है और हर मौजूद की पस्ती इसके ऐन बंदगी है। तर्जुमा, सातों आसमान और ज़मीन और जो लोग इनमें सब इसकी तस्बीह करते हैं, और सारे जहान में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो इसकी हमदो सना की तस्बीह ना करती हो, मगर तुम लोग इनकी तस्बीह नहीं समझते। सूरह इसरा आयत नंबर 44। इस तरह खुदा वंदे आलम दूसरे मौजूदात की इबादत और बंदगी के बारे में फरमाता है। तर्जुमा, ऐ शख्स, क्या तूने इतना भी नहीं देखा कि जितनी मखलूकात सारे आसमान और ज़मीन में हैं और परिंदे पर फैलाए गर्ज सब इसी की तरह तस्बीह किया करते हैं। सब के सब अपनी नमाज और अपनी तस्बीह का तरीका खूब जानते हैं। सूरह नूर आयत नंबर 41। लेकिन चूंकि इंसान साहिब अकल व खुर्द है, मुख्तार व आज़ाद खल्क किया गया है, अगरचे खुदावंद आलम ने हिदायत व गुमराही के रास्ते दिखा दिए हैं लेकिन अपने लिए रास्ते के इंतखाब में आज़ाद है, जैसा कि खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है। तर्जुमा, ख्वा शुक्र गुज़ार हो ख्वा ना शुक्रा। सूरह इंसान आयत नंबर 3। लिहाजा इंसान को अपने हदबे खलकत को मद्देनज़र रख कर इसको सोच समझ कर खुदा की अतात व बंदगी में मशगूल रहना चाहिए, और खुदावंद आलम का तशरीही कानून भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि शैतान और गैर खुदा की अतात में कदम बढ़ाए, बल्कि इंसान को खुदा की अतात और इलाही तकालीफ को अंजाम देना चाहिए, क्योंकि खुदावंद आलम ने इसी मकसद के तहत इसको पैदा किया है। तर्जुमा, और मैंने जिनों और इंसानों को इसी गर्ज से पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। सूरह जारियात आयत नंबर 56। और चूंकि खुदावंद आलम की इबादत निज़ाम खलकत व हस्ती के हमनवा है, और खुदावंद आलम की तकालीफ को अंजाम देना और इलाही वजीफा व मसूलियत पर अमल करना नेज इस खालिक का शुक्र अदा करना खुद एक मेहरबानी है कि जो हमको हयात व ज़िंदगी अता करता है, और इसकी इनायत और लुत्फ व करम से हमको सेहत व सलामती और दूसरी बहुत सी नेमतें अता की गई हैं, जैसा कि खुदावंद आलम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बानी फरमाता है। तर्जुमा, और जिसने मुझे पैदा किया वही मेरा दोस्त है, फिर वही मेरी हिदायत करता, और वो शख्स जो मुझे खाना खिलाता है और मुझे पानी पिलाता है, और जब बीमार पड़ता हूँ तो वही मुझे शफा इनायत फरमाता है, और वो शख्स जो मुझे मार डालेगा इसके बाद फिर मुझे ज़िंदा करेगा। सूरह शौरा आयत नंबर 78-81। किस तरह खुदा की अताअत से इनकार किया जा सकता है, और क्या वाकई ये हक व इंसाफ से बईद नहीं है कि हम ये कहें कि अब मॉडर्न इंसान तकलीफ़ व अताअत का ताबा नहीं है और अपने हकूक़ का तालब है। क्या इस्लाम इस फ़लसफ़े को कबूल कर सकता है? वाकई ऐसे नज़रिए का इस्लामी होना तो दूर की बात, ये तो अकल और इंसानियत से भी खाली है। सातवीं नशस्त, पेज नंबर 92। आज़ादी की हदूद। नंबर 1, इस्लाम का सियासी नज़रिया और आज़ादी को महदूद करने का शुबा। چونکہ ہمارا اسلامی سماج اسلامی قوانین اور ان متغیر قوانین پر کہ جو اسلامی دائرے میں وضع کیے جاتے ہیں ادارہ ہوتا ہے، لہٰذا ہماری حکومت بھی اسلامی قوانین پر ہونی چاہیے اور قانون کو جاری کرنے والے حضرات اسلامی دائرے سے خارج نہیں ہونے چاہیے، اور ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اسلامی قوانین پر عمل کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نظریہ انسان کی آزادی سے ہم آہنگ بھی ہے یا نہیں؟ انسان اپنی زندگی کے قوانین اور ان کی کیفیت کو طے کرنے میں آزاد ہے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ تمہیں اس دائرے میں چلنا ہے اور ان قوانین کی رعایت کرنی چاہیے، تو کیا یہ انسان کی اصل آزادی جو انسان کی مسلمہ حقوق میں سے ہے اس سے منافات تو نہیں رکھتا؟ ہم مندرجہ بالا سوال کو بیان کرنے سے پہلے مقدمے کے طور پر اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور اس نقطے سے ہم کو بعد کی گفتگو میں اس سے استفادہ کرنا ہے، اور یہ نقطہ غور طلب ہے۔ جس وقت عینی اور انضمامی چیزوں سے ہمارا واسطہ ہوتا ہے تو ان کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جب ہم طبعی علوم میں عینی چیزیں جیسے پانی، بجلی، اٹھنا بیٹھنا، اسی طرح ڈاکٹری امور میں آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، معدہ، دل، جگر کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو سمجھنا آسان ہے، کیونکہ ہم تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ ان الفاظ کے کیا معنی ہیں۔ ہاں، بہت کم ایسے مسائل مبہم ہوتے ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے، جیسے اگر پانی میں مٹی ملی تو کیا پھر بھی پانی ہے یا نہیں؟ لیکن عینی اور زمامی چیزوں کو سمجھنے میں غالباً کوئی خاص مشکل نہیں ہوتی، لیکن اگر ہمارے سامنے انتزاعی اور کسبی چیزیں ہوں، مثلاً فلسفی مفاہیم یا انسانی علوم، مثلاً علم نفسیات، جامع شناسی، حقوق اور علوم سیاسی وغیرہ جیسی چیزیں، تو ان کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کسی لفظ کے مختلف معنی ہوتے ہیں، اور ایک لفظ کے متعدد معنی ہونے کی وجہ سے ان کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ غالباً ایسے الفاظ کے بارے بحث کے بعد بھی انسان کسی یقینی نتیجے پر نہیں پہنچتا۔ مثال کے طور پر ہم سبھی لفظ فرہنگ کلچر سے آشنا ہیں، اور یہ لفظ مدارس کی مختلف کلاسوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اشعار، ادبیات اور روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ فرہنگ کے کیا معنی ہیں، تو شاید ہزاروں میں ایک بھی ایسا شخص نہ ملے جو فرہنگ کے معنی کرتے وقت کہے کہ اس لفظ کے 50 سے 500 تک معنی ہیں، اور یہ مسلم ہے کہ جب اس مشہور اصطلاح میں اتنا ابہام پایا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس ابہام کی وجہ سے بہت سے اجتماعی مسائل بھی تحت تاثیر قرار پائیں گے۔ اور جب توسعہ فرہنگی یعنی کلچر کی وسعت کی بات کی جائے گی، تو سوال کیا جائے گا توسعہ فرہنگی یعنی چیز اور اس کے مصادیق کیا ہیں، اور کس صورت میں اور کس طرح فرہنگ میں توسعہ ہوتا ہے، اور اگر پارلیمنٹ میں توسعہ فرہنگی کے لیے بجٹ پاس کیا جاتا ہے اور اس کو خرچ کرنے کے لیے جگہیں معین کی جاتی ہیں، ہر روز استخانہ میں اس لفظ کے معنی بیان کیے جاتے ہیں اور اس کے خاص موارد مشخص کیے جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کو اس سے غلط فائدہ اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ نمبر 2، آزادی کے بارے میں مختلف نظریات۔ ہم نے جو کچھ انتزاعی اور قصبی الفاظ کے بارے میں عرض کیا کہ جن کے خاص مصادق بھی ہیں اور ان کی تعریف و حد و حدود بھی مشکل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آزادی ایک انتزاعی مفہوم ہے جس کے بارے میں ہمیں بحث کرنا ہے۔ مثلا اگر کوئی یہ کہے آزادی، تو سننے والے کو اچھا لگتا ہے، اور آزادی کے لیے تمام ہی مذاہب ملت خاص احترام کے قائل ہیں، کیونکہ انسان فطری طور پر آزادی چاہتا ہے اور بینہ آزادی کی تلاش میں رہتا ہے۔ اگر کسی انسان سے سوال کیا جائے کہ آپ آزاد رہنا پسند کرتے ہیں یا غلام، لا محالہ سبھی حضرات جواب دیں گے آزاد رہنا، और कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि किसी का गुलाम बन कर रहना पसंद करेगा। लेकिन चूंकि आज़ादी के कोई वाज़ह मायने बयान नहीं होते हैं, जिसकी बिना पर आज़ादी का नारा लगाने वाले अफराद जो दीनी इख्तलाफात का शिकार हो जाते हैं, कोई कुछ मायने करता है तो दूसरा कुछ मायने मुराद लेता है। एक शख्स जब आज़ादी का मतलब बयान करता है तो दूसरा कहता है, हमारी नज़र में आज़ादी का मतलब ये नहीं है जो आपने बयान किया, बल्कि इसके मायने ये हैं जो हम करते हैं। इसी तरह दूसरा शख्स भी यही कहता हुआ नज़र आता है कि इसके बारे में जो कुछ अब हमारी तरफ नस्बत देते हैं वो हमारी मुराद नहीं है, बल्कि हमारी मुराद इसके अलावा है। अगर हम आज़ादी के बारे में लिखी हुई किताबों, मज़ामीन और रिसालों का मुताला करें, खुसूसन वो किताबें जो आखिरी सालों में लिखी गई हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि मौलफीन और साहिब नज़र हजरात के दहान आज़ादी का कोई मशख़स और मुअय्यन मायने नहीं है। एक शख्स आज़ादी का कुछ मायने करता है और इसी का दिफा भी करता है तो दूसरा शख्स इस नज़रिए की तनकीद करता हुआ एक दूसरे मायने करता है, और जाहिर में बात है कि इस कदर इख्तलाफ के बावजूद आपस में कोई समझौता नहीं हो सकता। लिहाजा तफाहम और समझौते के लिए आज़ादी की एक मुश्तरक तारीफ की जाना ज़रूरी है ताकि बहस किसी नतीजे पर पहुंच सके। अगर हमसे कोई सवाल करे कि आज़ादी और इस्लाम में साजगारी है या नहीं, तो हम इसके जवाब में अर्ज़ करेंगे कि पहले हमें आज़ादी को समझना पड़ेगा कि आज़ादी के मायने क्या हैं। और जैसा कि मग़रिबी मौलफीन ने आज़ादी के बारे में हदूदन 200 तारीफ बयान की हैं, अगरचा इनमें से बहुत सी तारीफ़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, सिर्फ एक या दो अल्फाज की वजह से इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन इन मकामात पर ये तारीफ़ें एक दूसरे के मुनाफी यानी मुखालिफ हैं। तो इस तरह के इख्तलाफी मवारद में किस तरह ये फैसला किया जा सकता है कि आज़ादी इस्लाम से साजगार है या नहीं? आज़ादी की तरह डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत भी है। ये एक मगरबी असलाह है जिसके मायने मर्दम सालारी हुकूमत या लोगों की हुकूमत किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इसके कोई ख़ास और मुअय्यन मायने मौजूद नहीं हैं। इसमें ये मुअय्यन नहीं है कि डेमोक्रेसी एक हुकूमत है या इज्तिमाई ज़िंदगी का एक तरीका है। क्या इसका ताल्लुक हुकूमती और सियासी मसाइल से है, माशा शनासी या मुदीरियत से इसका रब्त है, या जामा शनासी से मरबूत है, या इसका रब्त मुदीरियत से है? इस सिलसिले में भी बहुत बहसें हो चुकी हैं। इसके साथ साथ ये भी अर्ज़ कर दिया जाए कि ऐसे अल्फाज का दूसरी ज़बानों में तर्जुमा करना भी मुश्किल में इजाफा करता है। इस तरह लफ्ज़ लिबरलिज्म भी है कि जिसका तर्जुमा पहले आज़ादी ख्वाही होता था, और आज़ादी ख्वाही लफ्ज़ आज़ादी की वजह से बहुत जज़्ज़ाम और ख़ास अहमियत का हामिल था, और इस बुनियाद पर आखिरी दहाइयों में शाह की पहलवी हुकूमत आज़ादी ख्वाह पार्टी का नाम अपनाए हुए थी। लिहाजा चूंकि इस तरह के इंतज़ाई मफाहिम अच्छी तरह वाजा नहीं होते, इनसे बहस करना मुश्किल होता है, क्योंकि वाजा ना होने की बिना पर मतलब मुश्किल हो जाता है और कतई तौर पर इनके मायने हदें बयान करना मुश्किल होता है। इस तरह के अल्फाज की कोई ख़ास हद नहीं होती, कभी इन अल्फाज की हद कम हो जाती है और कभी बढ़ जाती है, और जाहिर सी बात है कि इन मुश्किलात की वजह से बहस भी पेचीदा हो जाती है। लफ्ज़ आज़ादी के बारे में इन मुश्किलात, अभामात और मुख्तलिफ नज़रियात, जैसा कि 200 से ज़ायद तारीफ़ें बयान की गई हैं, के पेश नज़र अगर हम इस्लामी लिहाज से आज़ादी को समझें और अलग अलग तारीफ़ों को इस्लाम के साथ मुकायसा करें, तो वाकयान ये एक मुश्किल व पेचीदा काम है। अमूमी और मुख्तलिफ लोगों के लिए इस बहस को बयान करना तो दूर की बात है, लिहाजा ज़रूरी है कि बहस को तबकी लिहाज से आगे बढ़ाया जाए और देखें कि आज़ादी के तरफदार हजरात आज़ादी से कौन से मायने मुराद लेते हैं और आज़ादी से क्या चाहते हैं। इस वक्त देखा जाएगा कि जो वो लोग चाहते हैं वो इस्लामी नुक्ताए नज़र से ठीक है या नहीं। वो लोग जो आज़ादी चाहते हैं और आज़ादी की तरफदारी भी करते हैं और ये दावा करते हैं कि इस मुल्क में आज़ादी नहीं है। आज़ादी का क्या मतलब मुराद लेते हैं? क्या मीडिया आज़ाद नहीं है? क्या लोग इनफरादी आज़ादी नहीं रखते या सियासी, इज्तमाही और इक्तिसादी आज़ादी नहीं रखते? आज़ादी का नारा लगाने वाले लोगों को किस सूरत में आज़ाद समझते हैं? अगर मसादिक के बारे में थोड़ी बहस की जाए तो एक वाज़ा नतीजे पर पहुंचना मुमकिन है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मद्दे मुकाबल क्या कहता है और क्या चाहता है। इस सूरत में गुफ्तगू की रविश मुबहम ना रहे और दूसरे अफराद भी इससे गलत इस्तेफादा ना कर सकेंगे। नंबर 3, आज़ादी मुतलक नहीं है और आज़ादी के दीन पर मुकदम होने का जवाब। मामूलन खुद गर्ज और धोखेबाज अफराद आज़ादी जैसी इंतजाई और मुश्किल चीज़ों से अपने अहदाफ व मकासद तक पहुँचने के लिए आज़ादी जैसे अल्फाज से सोए इस्तेफादा करते हैं और इस तरह बयान करते हैं कि सुनने वाले कुछ समझते हैं, जबकि हकीकत में इनके कहने का मकसद भी कुछ और ही होता है। मुगालता आमेज़ और धोखा देने वाले अल्फाज के ज़रिए लोगों को फरेब देते हैं। मिसाल के तौर पर तकरीरों, मुकालों और अखबारों में ये सवाल बयान किया जाता है कि दीन आज़ादी पर मुकदम है या आज़ादी दीन पर मुकदम है? क्या असल आज़ादी है और दीन आज़ादी के ताबा है, या असल दीन है और आज़ादी इसके ताबा है? यहाँ इस किताब का ये पार्ट ख़त्म हुआ। अगले हिस्से में नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे।